संग रहते हैं जैसे दीपक में बाती है भगवान हमारा साथी है
शांति। मुरलीधर शिव बाबा के मास्टर मुरलीधर आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप यूपी की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1956 में लौकिक जन्म हुआ और 1960 में घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो गई। तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा बाल्यकाल से ही ईश्वरीय वातावरण में पलने का। लौकिक अलौकिक दोनों ही पढ़ाइयाँ उसी ईश्वरीय वातावरण में पढ़ते हुए आप बड़े हुए और 1971 में पहली बार मधुबन की धरनी पर कदम रखा, बाबा से मिले, दिल पर अमिट छाप पड़ी और मन ने कहा अभी यहीं रह जाए, वापस नहीं जाना है। लेकिन खैर जाना पड़ा और 1972 में पूर्ण तैयारी के साथ आए और 1972 से लेकर आज दिन तक इस हेडक्वार्टर में रहकर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आरंभ में मनसा वाचा कर्मणा विविध सेवाओं में योगदान देते रहे, लेकिन 1976 में बाबा ने आपको एक विशेष सेवा के लिए सिलेक्ट किया। गेस कर सकते हैं आप सभी, हाँ, कौन सी सेवा? जो मुरलियां सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में करना और उसे सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करने की सेवा में सहयोगी बनना, जो आज दिन तक उस सेवा को आप निभा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास वर्तमान में सेंटरों पर पत्र पुष्प वगैरह आते हैं वो भी आप ही कंपोज करते हैं, अव्यक्त मुरलियों से छोटी छोटी बुकलेट्स तैयार करते हैं, दादियों पर, दीदी पर, बाबा पर, मम्मा पर भी छोटी छोटी बुकलेट्स जो तैयार होती है वो भी आप ही तैयार करते हैं, जिनसे हम सभी को पुरुषार्थ में बहुत मदद मिलती है। इतना ही नहीं, हमेशा ही मुरलियों से, ज्ञान रत्नों से खेलते खेलते बुद्धि में भी वही रमण करते रहते हैं ज्ञान रत्न, और उसी के आधार से अमूल्य रतन नामक टॉक शो आपने किया है जिसके 1300 से भी अधिक एपिसोड्स आप पूरे कर चुके हैं और आप सभी भाई बहने अवश्य उसका लाभ लेते होंगे। और ग्राम विकास प्रभाग के भी आप वाइस चेयरपर्सन हैं और जिस विभाग के द्वारा शाश्वत यौगिक खेती का एक नया कंसेप्ट दिया गया जो किसान जगत में बहुत क्रांति ला रहा है और हमें जैविक खेती वाला भोजन खाने को मिलता है पर लिमिटेड लोगों को, इसका विस्तार करना चाहिए ताकि सबको मिले। और इसके साथ साथ आप पूरे भारत भर में, विश्व भर में भ्रमण करते रहते हैं, भट्टियां आदि करा के पूरे ब्राह्मण परिवार को लाभान्वित करते हैं। इतना ही नहीं, मधुबन के अंदर जो फोटोकॉपी डिपार्टमेंट है, स्टेशनरी, हिंदी टाइपिंग आदि आदि सब आपके ही जिम्मे पर है और दादियों के पास भी जो पत्र आदि आते हैं उनको भी आप ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अनेक जिम्मेवारियां हैं और साथ साथ अनेक प्रतिभाएं हैं और इस ज्ञान योग के बहुत बहुत सुंदर सुंदर अनुभव भी हैं। तो आज एक बहुत सुंदर अनुभूति हम सबको कराने के लिए हमारे बीच में है और वो अनुभूति है एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति। तो सुनते हैं भ्राता जी से, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। बाबा के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, नेपाल की धरनी से मधुबन में तपस्या के लिए आए हैं। मधुबन में भी बाबा, दादियां और साथ साथ ही प्रकृति आप सबका स्वागत करती है। मैं समझता हूँ कुछ लोगों को पहला ही चांस होगा जो मधुबन में रह करके तपस्या कर रहे हैं। वैसे तो मधुबन में शांति बनाते हैं तो सैर करके चार धाम करके चले जाते हैं, लेकिन अभी आप तीन दिन यहाँ रह करके बाबा की हर पार्ट को, हर संबंध को बहुत समीपता से अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि बाबा संगम युग पर अपने बच्चों को सर्व संबंधों की अनुभूति कराते हैं। संबंध आदिकाल से चले आए हैं, सतयुग से लेकर के जब आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए आई तो पहला माता पिता का संबंध मिला, फिर भाई बहनों का संबंध मिला, दोस्तों का संबंध मिला, शिक्षक का, गुरु का, बहुत सारे संबंध हमारे एक दूसरे के साथ और सहयोग के लिए मिलते रहे। वैसे भी कहते हैं संबंध होते हैं सुख देने और सुख लेने के लिए, सहयोग देने और सहयोग लेने के लिए, लेकिन वो संबंध जो सतयुग और त्रेता में थे उन संबंधों से तो हर एक को सुख मिला, क्योंकि वहां पर कोई स्वार्थ नहीं था, कोई इच्छाएं लेकर के, कामनाएं रख करके एक दूसरे की मदद नहीं करते थे, निस्वार्थ भाव से सब संबंध निभाए और एक दूसरे को सुख दिया, सुख लिया। लेकिन जब द्वापर युग शुरू हुआ और आत्मा देह अभिमान में आई तो संबंध तो उस समय भी थे, थोड़ा सा विस्तार हुआ संबंधों का, लेकिन उन संबंधों में स्वार्थ आ गया और स्वार्थ के कारण कई प्रकार के विघ्न, टकराव पैदा होने लगे। 84 जन्मों का चक्र हम सब धीरे धीरे पार्ट बजाते बजाते अभी संगम युग पर पहुंचे हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, मेरे से सब संबंध जोड़ लो। तो सभी ने बाबा से संबंध जोड़े हैं कि कोई संबंध जोड़ा है, कोई नहीं, सब जोड़े हैं। अच्छा, माताओं ने सब जोड़े हैं। सबसे प्यारा संबंध कौन सा है? पिता का। अच्छा, और सखा का, खुदा दोस्त है, और साजन का। वैसे तो जीवन में हर संबंध की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल अनुभव ये रहा कि मैंने बाबा को शुरू से शिक्षक के रूप में बहुत प्यार किया है, शिक्षक, और शिक्षक की शिक्षाएं हमारी रक्षा कर रही हैं। वैसे हम सभी संबंधों के बारे में बताएंगे, कोई स्पेशल होते हैं। अभी तक भी 50-52 साल मधुबन में हो गए, शिक्षक की शिक्षाएं, उनकी पढ़ाई हमारा नित्य का नियम बना हुआ है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब हमें शिक्षक के द्वारा शिक्षाएं न मिलती हों। और उनका एक श्रीमत कहें, आज्ञा कहें, कि बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तो जब सीखने की भावना रहती है इस ब्राह्मण जीवन में, तो शिक्षक की याद आती है। हमसे कोई पूछता है आपने कितनी पढ़ाई की है, हम कहते हैं हमने तो कॉलेज नहीं देखा, यूनिवर्सिटी नहीं देखी, लौकिक कोई डिग्री नहीं है, लेकिन बाबा हमारा शिक्षक बन करके शुरू से अभी तक पढ़ा ही रहा है, पढ़ाई मेरी पूरी नहीं हुई, पढ़ ही रहे हैं। और कौन सी डिग्री लेकर के छोड़ेंगे, कौन सी? डबल सिरताज। हमारी डिग्री है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये डिग्री है। और इस डिग्री के लिए हम सब रेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहना। ऐसे नहीं कहना हम तो पढ़ के पास हो गए। तो शिक्षक के संबंध से जो कुछ बाबा पढ़ा रहे हैं, वो बहुत आनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ना, रेगुलर और पंचुअल होकर के रहना। तो बाबा हमें जो बनाना चाहता है, जो उनकी आशाएं हैं, वो हम सब बन सकेंगे, उस पद को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए कभी भी पढ़ाई में अलबेलापन ना आए, ये हमारी अंदर बाहर की आनेस्टी हो कि बहुत लगन के साथ जो कुछ बाबा पढ़ा रहा है, स्टूडेंट बन करके स्टडी का शौक होना चाहिए। बाकी तो माँ की ममता, पिता का प्यार हम सबको मिल रहा है, पाया है। लौकिक माता पिता जैसे बच्चों की पालना करते हैं, हमने तो अपने मधुबन घर में माता पिता की, दादियों के द्वारा पालना ली है, पाई है, और बहुत स्नेह की पालना, ममता की पालना पाई। सेवाएं सब करनी पड़ी। कोई भी सेवा अगर आप प्यार से करते हो यज्ञ की, तो यज्ञ पिता और यज्ञ माता प्रसन्न हो जाते हैं। और सभी लक्ष्य रखना कि संगम युग पर हमारे माँ बाप इतने प्रसन्न हो जाएं जो दिल से दुआएं दें, हर कामना हमारी पूर्ण कर दें। शुरू से यही लक्ष्य रखा कि हमारी माँ है कामधेनु माँ, जगत अम्बा। कौन है? कामधेनु माँ है। और बाप कौन है? कपल मुनि। ब्रह्मा बाप जोड़वा है, कपल है। और उस कपल मुनि ने इस रुद्र यज्ञ की स्थापना की, शिव बाबा ने उनके माध्यम से की, और हम सबको उसमें सहयोगी बनाया। तन मन धन समय जो कुछ है बच्चे, इसमें स्वाहा करो, सफल करो। तो जिन्होंने बड़े दिल से, सच्चे मन से अपनी सर्वशक्तियों को इस सेवा में समर्पित किया है, लगाया है, उन्हें माता पिता की दुआएं मिल रही हैं। और दुआएं जिसके साथ होती हैं, उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। कैसा भी पेपर आ जाए, शरीर का, मन का, धन का, संबंधों का, प्रकृति का, हर पेपर को वो आत्मा इतना सहज पार कर लेती है जिसके ऊपर माता पिता की दुआएं हैं। ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है, शिव बाबा हमारा बाप है। माता पिता के रूप में हम सबको अलौकिक नया जन्म दिया है। ये नए जन्म वाली हम सब आत्माएं ब्राह्मण कुलभूषण हैं, ब्रह्मा मुख की संतान है। केवल शिव बाबा से कनेक्शन नहीं, लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख का आधार लेकर के उनके तन में प्रवेश होकर हम सबको अलौकिक जन्म दिया। इसलिए माता पिता की हम सबको पालना मिल रही है। भले वो साकार में अभी नहीं है, लेकिन अव्यक्त वतन में रहते हुए भी कोई भी बच्चा देश में, विदेश में, कहीं भी कोने में बैठा हुआ है और बहुत प्यार से कहता है मेरा बाबा, मीठा बाबा, तो उसके सामने वो हाजिर नाजिर हो जाता है, उसको मदद करने के लिए बंधा हुआ है। हम सभी अलौकिक माता पिता की पालना में पल रहे हैं और संगम पर ये दोनों संबंध बहुत निकट के और बहुत प्यारे हैं। लेकिन माँ बाप प्रसन्न तब होते हैं जब बच्चे बहुत सपूत होते हैं। कोई कपूत हो, कोई माँ बाप की प्रॉपर्टी को व्यर्थ गंवाने वाला हो, नुकसान करने वाला हो, माँ बाप भी सोचते हैं कहाँ से पैदा हो गया। हम कभी भी ऐसा कोई कर्म न करें जो बाबा के मिले हुए खजाने हमारे सब व्यर्थ चले जाएं। माता पिता की प्रॉपर्टी को संभालना और बढ़ाना, इससे माता पिता प्रसन्न होते हैं। है प्रॉपर्टी बच्चों की है, वो क्या करेगा, कहता ये सब मेरे बच्चों का ही है। बाबा ने हम सबको ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, गुणों से हमारा श्रृंगार किया है, शक्तियां हम सबके आगे पीछे हैं, सर्वशक्तिमान बनाया है। जो कुछ बाबा से हमें मिला है, ज्ञान, गुण, शक्तियां, खजाने, वो सब दूसरों के लिए है। खुद हम संपन्न बने और दूसरों को दे करके दूसरों को भी संपन्न बना दें, भरपूर कर दें, तो माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। इसने मेरी प्रॉपर्टी को संभाला ही नहीं है लेकिन बढ़ाया है। ऐसा संबंध नजदीक का हो जो बाबा का मिला हुआ खजाना हम सब स्वयं में भी धारण करें और अनेक आत्माओं में दे करके, दान करके इस खजाने को बढ़ा दें। ये खजाना देने से बढ़ता है, संभालने से नहीं, बैंक में रखने से नहीं। अगर हम सब ने खूब इसको सेवा में लगाया है, दान किया है, तो एक रतन अनेक रतनों को अंदर भर देता है। आप ज्ञान दान करके देखो, आप गुणों का दान करके देखो। ज्ञान दान वाणी से होता है और गुणों का दान कर्मणा से होता है। जो कर्म हम कर रहे हैं उससे अनेक आत्माओं को प्रेरणाएं मिलें, वो सीखें कैसे किया जाता है। इतनी जवाबदारियां हैं फिर भी कितने हल्के हैं, कैसे खुशी खुशी से कर रहे हैं। कभी इनके चेहरे पर तनाव के, थकान के चिन्ह नहीं दिखाई देते। सेवाएं की जाएं लेकिन इतना हल्के रूप में, लाइट रह करके, कोई भी बोझ नहीं, कराने वाला करा रहा है, उसने हमें निमित्त बनाया है। तो बहुत प्यार से, खुशी से अगर कोई बच्चे दान करते हैं, कर्म करते हैं, तो उन कर्मों के परिणाम स्वरूप वो गुणवान बनते जाते हैं। कर्मों से अनेक आत्माएं सीखती हैं। जैसे आपने कोई कोई हों जो पुराने हैं, देखा है हमारी दादी को, जानकी दादी को, 104 साल की उम्र में इतनी शारीरिक प्रॉब्लम्स होते हुए भी, सुबह देखो तो लाइन चल रही है, डॉक्टर आए हुए हैं, और शाम को देखो तो क्लास करा रही है, इधर से उधर देश विदेश में जा रही है। मैं समझता हूँ लास्ट तक भी दादी ने सेवाएं नहीं बंद की, इतनी उम्र में भी सब जगह जाना, सेवा करना, सबको पालना देना, ऐसे कर्म किए जो लोगों को अभी तक भी, जो जवान हैं, जो थोड़ा मजबूत हैं, वो आलसी होंगे, लेकिन दादियां इतनी उम्र में भी ऐसे ऐसे कर्म करती, सेवा करती रही। कर्मों से उन्होंने गुणों का दान कर दिया, वाणी से जो आया उसको कुछ न कुछ अनमोल रतन सुना दिए, वो खुद माला माल बन गई। आप सब जानते हो दादी जानकी जी की शुरू से लेकर के, मैंने जब भी मधुबन में टाइप शुरू की है, एक भी क्लास मैंने दादी की मिस नहीं किया, सब टाइप किया, टोटल स्टॉक है मेरे पास, चाहे वो विदेश में रही चाहे देश में रही। मधुबन में रहती थी तब मैं डायरेक्ट टाइप कर लेता था, विदेश में रहती थी तो वहां से क्लासे रिकॉर्ड होके या कोई लिख के भेजता था, हर क्लास, लेकिन हर क्लास में नवीनता। लास्ट तक भी उनकी क्लासेज में रिपीटेशन बहुत कम थी, कुछ शब्दों की हुई बाद में, लेकिन लास्ट तक भी कुछ न कुछ नया सुनाया। इतना ज्ञान रत्नों से आत्मा भरपूर हो गई। लौकिक पढ़ाई क्या थी, 3 क्लास पढ़ी थी, लेकिन वो बुद्धिवान एकदम ज्ञान रत्नों से भरपूर आत्मा कैसे बनी, शिक्षक की पढ़ाई से इतना प्यार था, जो हर समय मुरली उसके हाथ में थी, कोई दूसरी किताबें नहीं पढ़ी, कोई बाहर का साहित्य नहीं पढ़ा, लेकिन बाबा की मुरली कई बार पढ़ी। जब जाओ कोई और सेवा नहीं है, कोई सामने नहीं है, या तो कोई को जवाब देना है तो ईमेल पढ़ रही है या मुरली पढ़ रही है, मुरली का चिंतन करके, मनन करके, उसको दूसरों को दान करके और अपने आप को माला माल बना लिया। क्या शिक्षक प्रसन्न नहीं होगा, ज्ञान का दान किया, गुणों का दान किया और मनसा से शक्तियों का दान किया। सुभावना है सब आत्माओं का भला हो, सब आगे बढ़े। कभी भी किसी के प्रति भी ये नहीं सोचा ये कैसा कर्म कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। हर आत्मा का अपना पार्ट है, सबके प्रति शुभ चिंतक, सबके प्रति शुभ भावनाएं, हम सबको ये प्रेरणाएं मिलती हैं कि अगर हमें बाबा ने दिया है शक्तियां तो माँ बाप प्रसन्न तब होंगे, उस संबंध का सुख हम तब ले सकेंगे जब उनके मिले हुए खजानों को, उनसे प्राप्त हुई शक्तियों को हम दूसरों को दे करके अपने में भरपूर करेंगे और दूसरों को भी माला माल बनाएंगे। देखना आप, ध्यान देना, माता पिता आज्ञाकारी बच्चों पर प्रसन्न होते हैं, शिक्षक ईमानदार बच्चों पर प्रसन्न होता है, और सतगुरु फरमान बरदार है, वो भी आज्ञा ही, लेकिन वो बहुत सिर माथे रखने वाली आज्ञा। कहते हैं सतगुरु की आज्ञा सिर माथे, एक भी आज्ञा का उल्लंघन न हो, अवज्ञा न हो जाए। माता पिता की आज्ञा तो कभी कभी बच्चे अलवेलेपन में टाल भी देते हैं, माफ कर देगा, लेकिन सतगुरु माफ नहीं करेगा। कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। अगर कोई भी प्रकार की अवज्ञा हो गई, श्रीमत की अवज्ञा हो गई, उसमें मन मत मिक्स कर दी, देह मान वाली मत मिक्स कर दी, परमत मिक्स कर दी, तो सतगुरु प्रसन्न नहीं होगा, उसकी दुआएं नहीं मिलेंगी। अगर सतगुरु है हमारा बाबा, वैसे गुरु के लिए कहते हैं गुरु माना गति सदगति करने वाला। लौकिक में तो गुरु कहां सदगति कर पाए, खुद की नहीं हुई दूसरों की क्या करेंगे, लेकिन शिव बाबा ने हम सबको गति सदगति का मार्ग बता करके, ज्ञान दे करके, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दे दिया। हम भविष्य के लक्ष्य को सामने रख करके पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, इस जीवन में बाबा ने हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दी है, विकारों से, बुराइयों से, बंधनों से मुक्त कर दिया। और क्या चाहिए, मुक्ति और क्या है, व्यसनों से भी मुक्त कर दिया। सारी दुनिया, हर एक आत्मा कहीं न कहीं किसी न किसी बंधन में बंधी हुई है, और बंधन दुख दे रहा है, और दुख के कारण वो सोचता है कि हमें मोक्ष मिल जाए, छूट जाए हम। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मोक्ष किसी को नहीं मिलता, मुझे ही नहीं मिलता। मोक्ष मिलना माना क्या हो गया, हो गया खत्म, समा गया जा करके, मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन मुक्ति, जीवन में रहते हुए मुक्ति, विकारों से, बुराइयों से, बंधनों से, दुखों से मुक्त आत्मा। तो भविष्य में हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा देगा सतगुरु का रूप, लेकिन वर्तमान में इतने वरदान देकर के सतगुरु ने हमें मुक्त कर दिया। जीवन में रहते हुए भी बंधन नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई विकार नहीं, व्यसनों से बिल्कुल मुक्त बना दिया। तो सतगुरु के जो बच्चे हैं, जिनका संबंध सतगुरु के रूप में बाबा से है, वो कभी भी किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं होंगे। बाप के रूप में आज्ञाएं पालन कर रहे हैं, उनका शो कर रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं। शिक्षक के रूप में बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, लगन से पढ़ रहे हैं, जब तक हैं जीवन में तब तक सीख रहे हैं, लक्ष्य सामने है, और सतगुरु की आज्ञाएं सिर माथे, जरा भी अवज्ञा न हो। अमृत वेले से रात तक बाबा ने जो आज्ञाएं दी हैं, कुछ आज्ञाएं हैं, कुछ फरमान, जैसे मिलिट्री के अंदर फरमान निकाल देते हैं सूट एंड साइट, अगर कुछ गलत करे, आज्ञा न माने तो उसको सूट कर दो। बाबा नहीं सूट करता, माया सूट कर देती है। इसलिए सतगुरु की आज्ञा पर कभी भी कोई भी प्रकार का अलबेलाप नहीं चाहिए। और सतगुरु की मेन आज्ञा है, पहला वरदान है, पवित्र बनो, योगी बनो। जिस आत्मा ने शुरू से अंत तक इस ब्राह्मण जीवन में इस वरदान को अपने जीवन में उतारा है, पवित्र है, योगी है, वो सतगुरु की दुआओं का, वरदानों का पात्र है। अगर जरा भी इसमें लूज है, अलबेला है, तो उसके वरदान नहीं मिल सकते। इसलिए पहला वरदान, जन्म से वरदान सतगुरु का हम सबको मिला, बी होली बी योगी। सभी पुरुषार्थी कर रहे हैं पुरुषार्थ। जितनी आत्मा संपूर्ण पावन बनती जाएगी, उसका योग निरंतर हो जाएगा, और जितना योग निरंतर होता जाएगा, उतनी प्योरिटी की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, उसके ऊपर डबल क्राउन अपने आप आ जाएगा। लाइट का क्राउन पवित्रता की निशानी है, पिछले संडे की मुरली सुनी है आप सब, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, दोनों सत्ताएं एक के हाथ में सतयुग में रहती हैं। कलयुग के अंदर राज्य सत्ता तो खत्म ही हो गई, कहीं राजा नहीं रहे। एक नेपाल के अंदर राज्य था, वो भी चला गया सब। लेकिन अभी जो सीट पर हैं, राज्य सत्ता की सीट पर हैं, वो कहते हैं हम धर्म निरपेक्ष, हम धर्म कोई नहीं मानते। बिना धर्म के राज्य को चलाना संभव ही नहीं है। सतयुग में राज्य और धर्म दोनों सत्ताएं एक साथ हैं। धर्म माना धारणाएं, धर्म माना उनके निजी जीवन की धारणाएं, वो राज्य चलाने में मदद करती हैं। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला नहीं। धर्म, बाबा ने उस दिन कहा, सत्यता और पवित्रता आप बच्चों का धर्म है, और जिस आत्मा ने इस धर्म का पालन कर लिया, उसके ऊपर डबल क्राउन आ जाएगा। राज्य का क्राउन हीरे रतन जड़ित ताज है, और प्योरिटी का क्राउन, धारणाओं का क्राउन, धर्म का क्राउन एक लाइट का ताज है। तो इस समय सतगुरु की इस आज्ञा के आधार से, इस फरमान के आधार से हम सब डबल क्राउन के अधिकारी बन जाते हैं। और फिर चार संबंध हो गए ना, माता पिता शिक्षक सतगुरु, और ऐसे ही फिर और व्यवहारिक जीवन के लिए चार संबंध आते हैं। उसमें सबसे पहले थोड़ा सा बड़े होते कहते इसका शादी कर दो, परमात्मा कहते हैं अभी संगम ऊपर वो शादी तो बर्बादी हो गई, क्योंकि विकारों की उसमें लेन देन हो रही है, बुराइयां आ गई, विकार आ गए, स्वार्थ आ गया। संगम ऊपर हम सब ने, आत्माओं ने, आत्मा रूपी सीताओं ने शिव बाबा को साजन बनाया, राम को अपना बनाया। इसमें स्त्री और पुरुष शरीर की कोई बात ही नहीं है, हर एक शिव बाबा की, परमात्मा की, उस राम की सीता है, उस भगवान की भक्तिन है। हम सब बहुत दिल से पिताव्रता के साथ पतिव्रता, और पतिव्रता की निशानी क्या होती है आप सब जानते हैं, समाज के अंदर भले कलयुग में वो पतिव्रता कहां रहे, लेकिन गायन है कि पतिव्रता नारी इतनी वफादार होती है जो कहीं भी उसकी आंख दूसरी तरफ नहीं जा सकती, एक के सिवाय और कोई पर नजर नहीं जाएगी, चाहे वो कितना भी महान हो, कितना भी विशेष हो, कितना भी रूपवान हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन जो पतिव्रता है वो एक तेरे सिवाय और दूसरा कोई नहीं। लौकिक में तो ऐसा संभव नहीं रहा, लेकिन परमात्मा के साथ ऐसी सजनी का संबंध, साजन सजनी का है, जो मेरा तो एक दूसरा न कोई, एक के सिवाय और कोई दूसरा अपनी तरफ आकर्षित न करे, कोई कैसा भी क्यों न हो, हम सबको संगम युग पर एक बाबा को अपना संसार बनाना है। और एक बाबा संसार में दो चीजें हैं, एक व्यक्ति है, दूसरी वस्तुएं हैं। संसार की न व्यक्तियां कोई आकर्षित करें, न कोई वस्तु आकर्षित करे। वफादार सजनी उसको कहते हैं जिसके अंदर से दिलरुबा के रूप में दिल के गीत निकलते हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से संबंध निभाऊं, तेरे सिवाय और मेरा और कोई नहीं। ऐसा बना है बाबा को साजन कि अभी तक है कोई कोई, देखना, चेक करना, बहुत पक्का सौदागर है, ऐसा नहीं है। जरा भी अगर कहीं देहधारी में जरा रग होगी तो बाबा का सौदा कैंसिल हो जाएगा, वो वफादार नहीं कहला सकता। वफादारी तो आप सब जानते हो, जानवरों की वफादारी भी गई हुई है, कुत्ते हैं कितने वफादार मालिक के होते हैं, मालिक के ऊपर कोई अटैक करके देखे, मालिक को कोई हाथ लगा के देखे, कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते। जहां पर पालना होती है, जो माता पिता या जो उनके मालिक उनको संभालते हैं, उनके पीछे वो कुर्बानी दे देते हैं, उसको वफादार कहते हैं। जैसे यहां पर राजस्थान में आप लोगों ने महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ी होगी। महाराणा प्रताप जब मुगलों के घेरे में आ गए, बहुत समय वो जंगल में रहे कि हम उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम उनके बंधन में नहीं आएंगे, अपना राज्य नहीं देंगे। बहुत समय तक उन्होंने पहाड़ों पर रह करके घास की रोटियां खाई, परिवार सहित बंधन में नहीं आए। उनका घोड़ा बड़ा वफादार था, बहुत वफादार था, जहां पर भी उनको घेराव में फंस जाते थे वो घोड़ा उनको जंप लगा के पार करा देता था इधर से उधर। लास्ट में उदयपुर के पास हल्दी घाटी है, और हल्दी घाटी में यादगार है कि जब मुगलों ने पीछे से अटैक किया, वार करने लगे, तो उस घोड़े ने बहुत बड़ा नाला था, कूद गया, और वो कूदा तो बहुत बड़ा नाला था, पार हो गया, लेकिन वो गिरा तो वहीं पर उसकी मौत हो गई। महाराणा प्रताप को कुछ नहीं हुआ, वो बचा दिया उसको, ये वफादारी थी उसकी। कहने का भाव मेरा, पतिव्रता और पिताव्रता अगर साजन है तो उसके पीछे हम सब की ये जीवन है, उसके सिवाय और कोई नहीं है। इतनी वफादारी चाहिए, कहीं भी आंख न जाए, कोई कितना भी कुछ दे रहा हो सहयोग, मेरे को क्या देगा। सब संबंधों से एक बाबा को बनाना, और उसमें ये संबंध इतना समीप का है, लौकिक में भी इसके बिना नहीं रह सकते। हम सबको बाबा ने अपने साथ जोड़ा, और किसी देहधारी के साथ न जुड़ना इस समय, नहीं तो दुख होगा, बंधन होगा। कितने आज झंझट उसके परिवृत्ति में आ गए। अब बनाई है तो निभा रहे हैं, लेकिन जिनकी नहीं है वो क्यों नया बनाए। वो बाबा के साथ अपने सब संबंध जोड़ते हैं, और प्रवृत्ति में रहते हुए भी अंदर से इतने निवृत्त हैं, न्यारे हैं, कि अब ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरा पति नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा ही साजन है, एक शेष सर्व संबंध है। कहीं भी दैहिक दृष्टि नहीं जा सकती, बहुत पवित्र दृष्टि है, शुद्ध भावनाएं हैं, तब कहेंगे इसने भगवान को साजन बनाया है। फिर साजन के साथ बंधु, सखा और पुत्र, टोटल 8 संबंध बता रहा हूं, बाकी संबंध तो और सारे हैं वैरायटी। अगर कोई को पुत्र नहीं होता है तो उसको कितना तकलीफ होती है, वारिस नहीं है, इतना कमाया है, इतनी प्रॉपर्टी है, कौन इसका हकदार है। क्या हम सब ने, बाबा कई बार पूछते हैं, बच्चे तुमने भगवान को बेटा बनाया है, किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया है, किसने बनाया हो तो हाथ उठाओ देखें, तो बनाया पक्का। बहने सोचती है क्या बोल रहे हैं, भाइयों ने बनाया है, बनाया बेटा नहीं, कुमारों ने नहीं बनाया, साथी बना लिया, बेटा नहीं बनाया, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। कहता अगर मुझे नहीं बनाओगे तो मैं भी नहीं बनाऊंगा, 21 जन्मों का वर्षा अगर मेरे से लेना है तो संगम पर मुझे बेटा बना लो। मैं एक अनुभव सुना देता हूं अपना, लौकिक में मैं अपने परिवार में इकलौता बेटा, और इकलौते में भी 3 के बीच में इकलौता। हमारे चाचा जी ने शादी नहीं की, ज्ञान में आ गए बचपन में, पिताजी के छोटे भाई, और पिताजी के जो बड़े भाई थे वो संन्यास ले लिया था, वो संन्यास के कारण मंदिर बना के पूजा पाठ करते थे, उन्होंने शादी नहीं की। अब पिताजी के हम 2 बेटे, 1 बहन 1 भाई। बहन 7 साल की थी, सेंटर पर सेवा करते चली गई, वहीं पढ़ाई किया, वहीं सेवा पर लग गई। अब मैं बचा। अब जब मैं मधुबन में आया तो मेरे ऊपर तो क्या बंधन, पिताजी के जो बड़े भाई थे वो भी बंधन डाले, ऐसे कैसे, कौन संभालेगा सब, 3 के घर हैं, दुकानें हैं, खेती है, ये है वो है, और समाज वाले तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कुलदीपक कौन रहेगा, 1 तो कुलदीपक होना चाहिए, ये तो समाज का नियम ही नहीं है, कैसे तुम जाओगे, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, क्या करोगे, बहुत सारी बातें शुरू शुरू में, बाद में सब पार हो गई। हमने कहा बाबा मेरा बेटा है और बेटा संभालेगा अभी। और आज तक भी मैं आपको बताऊं, कोई लौकिक में घर में बचा नहीं, सब चले गए। बहन है सेंटर पर, चाचा जी पिताजी सब मधुबन में समर्पित हुए, जब माँ ने शरीर छोड़ा उनको भी समर्पित करा दिया, वो भी यहीं रहे, यहीं शरीर छोड़ा उन्होंने। लेकिन हमने शुरू से एक ही लक्ष्य रखा था कि घर में जिसकी जरूरत पड़ती है, भाई गाय है, बैल है, भैंसे हैं, इनको तो बेच दो, इनको कौन संभालेगा, लेकिन घर और खेती नहीं बेचना, दुकान भी भले बेचो, तो और सब निकलवा दिया, लेकिन घर में बाबा को बिठाया, गीता पाठशाला, और जो पक्के कुमार उस समय के निकले हुए हमारे बचपन के साथी थे उनको घर दिया संभालने के लिए, कोई भिखारी यहां नहीं रहेगा, बहुत बड़ा घर, और उसके साथ साथ खेती में जो पैदा होगा आप लोग जैसा जो बो जो पैदा करो, जितना यज्ञ में देना चाहो दो, नहीं देना चाहते नहीं दो, लेकिन ये सब बाबा का है, बाबा के लिए सेवा में लगना चाहिए। आज तक रोज मुरली चलती है, भोग बनता है, दीपक जलता है, तो कुल दीपक तो घर में बैठा है। अगर 25-30 भी पहुंच जाएं, अगर गांव में इतने छोटे गांव में 20-25-40 पहुंच जाएं, एक बार हम लोग 50 बहनों को लेके गए पिकनिक कराने के लिए, आराम से सब चारों तरफ सो गए। लेटरिन बाथरूम थोड़ी दिक्कत होती, एक दो ही थे क्यों, गांव में बनाने नहीं देते जल्दी, कुआं था पानी तो बहुत होता कुएं में, बिजली नहीं है लेकिन सोलार लगा लिया था। 50-60 लोग पूरी रात आराम से पिकनिक किया, भट्टी किया, योग किया, तो कुलदीपक तो बैठा है ना, घर एक आश्रम बना हुआ है, खेती का पैसा घर मधुबन आता है, सेंटर पर जाता है, और हम बाबा की सेवा कर रहे हैं। अगर पक्के हैं, कुमार पक्के हैं, और बाबा को कुलदीपक बनाया है, तो कोई बंधन डाल ही नहीं सकता है कि तुमको तो शादी करनी पड़ेगी, कोई एक बच्चा तो चाहिए, किस लिए चाहिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, तर्पण अर्पण के लिए क्या चाहिए, सब कर दो, सबका एक साथ ही कर दो। लेकिन संबंधों में बाबा को अगर अपना बनाया है तो सब पहला हिस्सा, पहला अधिकार बाबा का है। इसलिए कई माताएं कहती हैं मेरे 3 बेटे तो हैं लेकिन बड़ा बेटा शिव बाबा है, जो बेटों के लिए मंगाएंगे, जो उनके लिए रखेंगे, वो सबसे पहला हिस्सा बाबा के लिए निकालेंगे। बहुत भोली सच्ची माताएं जो हैं, बहुत दिल से बाबा के लिए, कोई इतना छोटा सा, एक माता एक बार इतना छोटा सा झूला बना के ले आई कि बाबा बेटा है झूले पर झूलेगा, सोने का बना के ले आई। कोई कुछ बना के ले आते हैं, कोई उनके लिए कपड़े ले आते हैं, बच्चे ले रहे हैं तो हमारे सेंटर पर होना चाहिए, बाबा के लिए होना चाहिए। तो उसका अधिकार, उसका हिस्सा, उसकी याद बेटे के रूप में अगर करेंगे तो बेटा बहुत सेवा करेगा। वो बेटे तो आजकल पता नहीं क्या करते हैं, माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में रख के आ जाते हैं, लेकिन हमारा बाप, हमारा बेटा हमारी अंत तक सेवा करने वाला निश्चित है, कभी कोई तकलीफ होने नहीं देगा। लेकिन अगर सच्चाई है तो संबंधों में सच्चाई बहुत जरूरी है, बंधु है, भाई है, सदा ही पार्टनरशिप निभाता है, कोई भी बात हो सहयोगी बनता है, साथ देता है। आजकल तो दो भाई भी एक साथ नहीं रहते, एक साथ शादी हुई और चूल्हे अलग हो गए, लेकिन बाबा हमारा सच्चा भाई बन जाए और हर समय मदद के लिए बंधा हुआ हो, साथ दे, सहयोग दे, दुख का दुख साथी बने, तो भाई के रूप में बाबा को याद करो। और फिर सखा खुदा दोस्त है, खुदा दोस्त है, खुदाई खिदमतगार है, उसकी खिदमत पर हम सब, उसकी सेवा पर हम सब हैं, और दोस्त से कोई बात छिपाई नहीं जाती, जो कुछ अंदर है वो बाहर होता है। माता पिता से छिपाएंगे, टीचर से छिपा लेंगे, लेकिन दोस्त के आगे क्लियर होते हैं। इसलिए बाबा कहता सर्व संबंध मेरे से जोड़ो, ऐसे नहीं हद का कोई मित्र बना लेना, फिर क्या होगा, वो मित्र कहीं ना कहीं अगर धोखा दे दिया तो दुख होगा, परेशान हो जाओगे। आज का सच्चे दोस्त कहाँ रहे, स्वार्थ के साथी हैं। जब तक आपके पास पैसा है, मान मर्तबा है, धन दौलत है, तब तक आपके साथ साथ हैं, और जिस दिन कुछ ऐसा हो गया, आपकी जरूरत पड़ी, दोस्त दुश्मन बन जाता, किनारा कर लेता। हमारा खुदा दोस्त ऐसा नहीं है, धोखा देने वाला, हर पल साथ निभाने वाला है। सच्चे दिल से अगर उसको खुदा दोस्त बनाया है, अपना सब समाचार उसको दो और उसका सहयोग लो, बहुत प्यार से रूरिहान करो, बड़े दिल की बातें करो, कुछ भी छिपाओ नहीं, अपने आप उस समय पर साथ देगा, मदद देगा, गाइड करेगा, गुप्त रीति से आपको टच कर देगा, किसी न किसी को निमित्त बना देगा। तो हम सब बाबा को खुदा दोस्त बनाएं, अपना सच्चा भाई बना लें, और साथ साथ बेटा बना लें, साजन बना लें। तो ये चार संबंध इधर, चार संबंध इधर, जो हमारे रोज के संबंध हैं वो माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, रोज की पालना में हम सब पल रहे हैं। इन चारों संबंधों की तो रोज पालना मिल रही है। प्यार से बाबा मुरली सुना रहा है शिक्षक बन करके, अमृत वेले उठाता है। माँ क्या करती है, कहते साकार में जब बाबा थे, मैं तो उस समय नहीं आया मधुबन में, मेरी पालना तो बाबा ने पत्रों से की, बचपन था और बंधन बताया ना वो थोड़ा सा था, लेकिन बाबा सवेरे सवेरे उठ करके बच्चों को मक्खन मानी खिलाता था अपने हाथ से। मैं जब आया हूं तो दादी प्रकाशमणि ने उसी तरह से हम सबकी पालना की, कभी भी योग के बाद सोने नहीं दिया, कोई जाके सो जाए, कईयों की आदत होती है ना योग के बाद जाके बिस्तर पर पकड़ ले सो लेते हैं। दादी कहती थी इनको सोने नहीं देना योग के बाद। एक यहाँ दादा आए मिलिट्री के थे रिटायर, बहुत चुस्त थे, तो वो ट्रक चलाते थे और सब्जियां लाते थे, बहुत चुस्त थे। तो दादा को दादी कहती थी देखना ये गोप जो है ना योग से उठते हैं बिस्तर में सो जाते हैं, भाई लोगों को तुम जाओ इन पर पानी डाल के इनको उठा दो, सोने नहीं देना, रमणीकता से। तो आता था सवेरे सवेरे, उठो उठो उठो, चलो पिके नक्की लेक पर दौड़ लगाना है, और सबको एक साथ करीब 15-20 भाई और कुछ बहनें भी चलती थी, सबको एक साथ दौड़ाता था, खुद भी दौड़ता था सबको दौड़ाता था, और दौड़ाने के बाद एक जगह खड़ा कर देता नक्की लेक पर, पीटी कराता था लेफ्ट राइट, मिलिट्री में करते ना ऐसे। वहां से फिर वापस आते थे तो दादी कहती थी सब थक के आए ना, लाओ मैं इनको मक्खन माने खिलाऊंगी। पालना माता पिता के रूप में मक्खन माने खिलाऊंगी, कुछ न कुछ रोज नई चीज बना करके, गरम हलवा, मक्खन मानी, रोज सवेरे सवेरे जो सैर करके एक्सरसाइज करके आए उनको मिल जाएगा। पालना तो पालना ही है, कई टीचर सभी भी पालना करती है, दादी जानकी जी इतनी पालना करती थी कोई उनके पास पहुंच जाए बादाम देंगी, टोली देंगी, ये देंगी, पालना तो यही है ना। ज्ञान योग की पालना के साथ साथ स्थूल में भी इन दादियों ने अपने सब ने हर प्रकार की पालना दी, तब तो हम कहते हैं मेरी दादी। ऐसे ही सेंटर्स पर भी स्थूल पालना के साथ, ज्ञान योग की पालना के साथ इस प्रकार का भी अगर ध्यान रखा जाता है बड़े दिल से, कई सेंटर्स पर मैं देखता हूं बड़ी दिल से भंडारा खुला रहता है, खाओ पियो रहो आओ, कोई एडवांटेज न ले, कई बार एडवांटेज भी कई लेते हैं, लेकिन मैंने देखा मैं लंदन, अमेरिका, कई स्थानों के रिट्रीट सेंटर्स में गया, सब जगह भंडारा खुला हुआ भरपूर है, कोई भी आता है खा रहा है जो चाहिए खा रहा है, वैरायटी रखा है, बनाने वाले बना रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, खिलाने वाले खिला रहे हैं, ऐसे थोड़ी यज्ञ चलता है। मुझे तो एक बहुत वंडरफुल बात इस बार ही लगी विदेश की, अमेरिका के टूर पर था अभी एक महीना, वहां नौकर नहीं है, वहां कोई काम करने वाले नहीं है, लेकिन जो क्लास में आएगा सुबह की क्लास में उन सबको नाश्ता देना है, ऐसे बिना नाश्ते के वो नहीं भेजेंगे, रिट्रीट रखिए तो उनको नाश्ता भी दिया, दोपहर का भोजन भी दिया और रास्ते के लिए रात के लिए भी भोजन बांध के दिया। और दो बहनें, एक दो बहनें और माताओं का साथ लेती थी। हमने कहा आप लोगों की पालना बड़ी वंडरफुल है, विदेश में रह करके कोई नौकर नहीं है, कोई काम करने वाले नहीं है, कोई बर्तन मांजने वाले नहीं है, 3 बजे उठ करके नाश्ता बना रही, 4 बजे अमृत वेला भी कर रही, और खुद ही गाड़ी ड्राइव करना, खुद ही सबको ले जाना, सबको खिलाना बनाना, कितनी मेहनत से सेवाओं को जमाया है। ऐसे थोड़ी विदेश में इतने सब बच्चे निकले हैं, पालना दी है, कोई कोई जगह पर पालना ही नहीं है। तो संबंध माना पालना, संबंध माना एक दूसरे को सुख देना, सुख लेना, सहयोग देना, सहयोग लेना। तो ऐसे हम सब बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, सब संबंधों से हमने बाबा को अपना बनाया है, इसलिए कोई देहधारी के संबंधों में हम फंसते नहीं, फंसना भी नहीं तो वहां तो दुख ही दुख है, बंधन ही बंधन है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना। सच्ची दिल से अगर बाबा कहोगे तो बाबा आपको सहयोग देने के लिए हाजिर हो जाएगा, मदद के लिए बन जाएगा। कई कुमार जब बीमार पड़ जाते हैं ना, एक जगह पर 10-12 कुमार रहते थे, एक सेंटर की कहानी बताता हूं, बहुत सेवा करते थे यज्ञ की, सेंटर की, दिन रात। एक भाई ने तो पूरा ही जैसे समर्पित होकर के, समर्पित रूप से सारे सेंटर को संभाला था। एक दिन वो आ रहा था, रास्ते में उसका स्कूटर फिसल गया और उसको एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया। अब पैर टूट गया, अब उसको ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं लौकिक वालों को कैसे बोलूं और बहनों को कैसे बोलूं कि तुम मेरी सेवा करो। न बहनों को बोल सकता हूं, न मैं लौकिक को बोल सकता हूं। लेकिन जो 10-12 कुमार थे, उनको जब पता चला, वो भाग करके गए और उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर की सेवा किया, उसका ऑपरेशन कराया, और उसकी जब तक वो चलने फिरने जैसा नहीं हुआ तब तक उसके साथ 2 कुमार रहे, उसको सेवा दी, मदद की। नहीं तो कुमारों को तुरंत याद आता है, यार मैं अकेले पड़ गया, मैं बीमार हो गया, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे कोई खाने देने वाला नहीं, अब तो शादी कर लो तो अच्छा है। जितने कुमार फेल होते ना, इसलिए फेल होते। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है, कई ऐसी माताएं होती हैं जो सहयोग दे सकती हैं, कई ऐसे कुमार होते हैं जो उनको मदद कर सकते हैं। कभी भी उनको ऐसी पालना दो जो लौकिक की याद ही ना आए, तो माया कहां से आएगी? अमर भाव का वरदान लेके जाना बाबा से। तो जो भी कर सकते हो दूसरे को, ऐसे सहयोगी बनो। सहयोग निस्वार्थ भाव से देना, ऐसे नहीं मैंने दिया तो ये मेरे को भी देगा। कई लोग इस भावना से करते हैं तो उसका बंधन बन जाता है, ये बंधन नहीं है। हमारे पास है, शक्ति है, समय है, धन है, भोजन हम बना सकते हैं। और एक कोई कुमार बीमार पड़ गया, कोई कुछ उसको जरूरत है, तो सेंटर पर क्यों आधारित हो? सेंटर की बहनों की मर्यादाएं अपनी होती हैं, उनके नियम अपने होते हैं। अगर ज्यादा कोई को पूछने लगते हैं तो लोग गलत दृष्टि से देखते हैं। इसलिए जरूरी है प्रवृत्ति वाले, जो ऐसी माताएं पक्की ज्ञानी योगी हैं, वो अपने साथियों की, अपने कुमारों की, अपने सेंटर के भाइयों की आवश्यकता के अनुसार मदद करें। तो ये संबंध भी बहुत एक दूसरे को सहयोग देते हैं, वो बाबा से बिछुड़ता नहीं है, बाबा से जुड़ जाता है। तो हम सबका परिवार है, पालना है, स्नेह है, शिक्षाएं हैं, पलते चलो, उड़ते चलो, संगम युक्त जैसा परिवार और कहीं दुनिया में मिलने वाला नहीं है। जैसा परिवार अभी मिला है ना हम सबको, मिलेगा कभी? पूरे कल्प में नहीं मिलेगा। अगर आज कोई एक सेंटर के किसी एक भाई का कुछ हो जाता है, अचानक कुछ हो जाता है, उसके लिए कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपने बाबा के बच्चे सब आ जाते हैं, हर प्रकार का उसको जो करना है कर लेते हैं। इसलिए हम सब इस ईश्वरीय परिवार के, बाबा के बच्चे, एक दूसरे को निस्वार्थ रूप से संबंधों का अधिकार जो है, सहयोग है, वो हम देते चलें और बाबा से पक्का संबंध बना के रहें। किसी भी देहधारी के बंधन में न बंधे, इसके लिए बाबा से हमारे सर्व संबंध है। बंध गए तो बंधन माना दुख, कभी भी वो मुक्ति का अनुभव कर ही नहीं सकता। तो हम सब बाबा के बच्चे संगम पर मुक्त हैं, जीवन में रहते जीवन मुक्त है, ऐसा अनुभव करना। ठीक है, ओम शांति। अभी हम सभी आधा घंटे के लिए उड़ेंगे, सबको पंख हैं, उड़ सकते हैं, मन बुद्धि के विमान से उड़ना है। बहुत खुशी और नशे के संकल्प से बैठो। खड़ा होना है क्या? एक मिनट खड़े हो जाओ, अच्छा फ्रेश हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। हाँ, कोई कराते हैं एक्सरसाइज? कोई बहने कराती हैं क्या? है कोई कराने वाली? ठीक है, पहले ऐसे कर लो, हिल लो अच्छी तरह से चारों तरफ से, कर लो एक्सरसाइज कर लो। पहले पीछे कर रहे हैं सब। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो। कितनी अच्छी तपस्या की गुफा बाबा ने अपने बच्चों को दी है। भ्रकुटी की गुफा में मैं तपस्वी आत्मा, लाइट माइट से संपन्न एक चैतन्य शक्ति, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। मन बुद्धि को भी शांत कर दो। संकल्प करो इस पांच तत्वों की दुनिया से दूर, सूर्य चांद तारा गणों से भी पार, उस लाइट के वतन में जहां हमारे माता पिता हम बच्चों का आवाहन कर रहे हैं, आओ मेरे बच्चे इस अव्यक्त वतन की सैर करो। ये लाइट का वतन मेरा वतन है। मैं एक बहुत सुंदर चमकीली ड्रेस में, फरिश्ते ड्रेस में, बाबा के सन्मुख विराजमान हूं। बाप दादा की पवित्र किरणें मस्तक से निकलते हुए मुझ आत्मा को शक्ति प्रदान कर रही है। सर्व शक्तियों से संपन्न मैं लाइट का फरिश्ता चारों ओर लाइट की किरणें फैला रहा हूं। ये पवित्र किरणें इस संसार के तमोगुण को समाप्त कर रही हैं। अंधकार दूर हो रहा है। अपनी रूहानी नजर से सर्व आत्माओं को निहाल करो। सर्व शक्तियों की सकास दो। मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया से भी पार अपने निज देश में निज स्वरूप में परमधाम घर में उस ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे उनके बहुत समीप एक चमकते हुए सितारे के रूप में विराजमान हूं। मैं एक लाइट हूं, माइट हूं, असीम शांति प्यार पवित्रता का सागर उनकी किरणों का अनुभव करो, उस प्यार में समा जाओ। अपने ऊंचे घर में मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर इस पूरे ग्लोब को सर्च लाइट दो। ये परमधाम की ऊंची स्थिति प्रकृति के पांचों तत्वों को परिवर्तन करने में बहुत मदद करती है। प्रकृति पति परमात्मा के साथ अपने प्रकृति जीत स्वरूप में स्थित होकर इस प्रकृति के पांचों तत्व तुम को लाइट दो। शांत हो जाए, हलचल समाप्त हो जाए, ये अपने निजी स्वरूप में आ जाएं, सबकी सेवा में मदद करें। शुभ भावनाओं की सकास दो, पवित्र लाइट की किरणें दो। अपने निराकारी दुनिया से। सर्व शक्तियों से संपन्न बनकर मैं आत्मा इस साकार लोक में साकार तन में अवतरित हुई हूं। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए उस पिता ने मुझ आत्मा को इस सृष्टि रंगमंच पर भेजा है। मैं उनके साथ कंबाइंड हूं। सभी प्रकृति के बीच में स्वयं अनुभूति के साथ बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ। परम पवित्र सर्वशक्तिमान परम ज्योति शिव बाबा मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड है। उनके श्रेष्ठ संग के रंग में मैं आत्मा उनके समान मास्टर हूं। सर्वशक्तियों का अनुभव करो। पवित्रता का अनुभव करो। अपने महातपस्वी श्रेष्ठ योगी जीवन के आसन पर बैठकर इस पूरे वृक्ष को सर्च लाइट दो। सबका भला हो, सब सुख पाए। एक एक आत्मा सामने आ रही है, शक्ति ले रही है, नजर से निहाल हो रही है। शक्ति स्वरूप में, दाता स्वरूप में सबको देते चलो।